पाने तैयार रहो तब तुम अपना कोई धंधा शुरू कर ले। वो चारों हीरे जो रखे हुए थे तिजोरी में वो अपने पिता के मित्र के यहाँ ले जाता है और कहता कि ताऊ ये पिता कुछ हीरे रख के गए थे, आप इनको रख लें, कुछ पैसे दे दें, मेरी आजीविका चलने लगे। वे जो मित्र थे व्यापार की थे हीरों के, देख करके समझ गए कि ज्यादा कीमती नहीं है। अब क्या कहें, अगर ये कह देते हैं कि इन हीरों की कोई खास कीमत नहीं है तो क्या सोचेगा सामने वाला? यही सोचेगा कि हमारी विपत्ति के समय पर हमें मिले हमसे धोखा करने के लिए, कोई भी कह दे। तो उन मित्र ने कहा कि सुनो बेटे, ये तो पिता की अमानत है और तुम्हारे पिता तुम्हारे अकेले पिता थोड़ी, मेरे मित्र भी हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए कुछ काम देने का। तुम तो इनको सुरक्षित अपने घर ज्यों के त्यों रख के आओ, मेरे यहाँ पर हीरे जवाहरात का काम सीखो और सीख करके अपनी आजीविका चलाओ। उसको और क्या चाहिए था, हीरे अपने ज्यों के त्यों तिजोरी में वापस रख दिए। साल दो साल तक हीरे जवाहरात का काम सीखता रहा। एक दिन उसके मन में आया कि अरे अब तो मैं बिल्कुल हीरों का पारखी हो गया हूँ, अपने स्वयं पिता के रखे हीरों की कीमत तो देखूं कितनी है, मेरे पास अच्छी खासी संपत्ति तो है वैसे भी। और जब उसने तिजोरी से वो हीरे निकाल कर देखे तब उसको उन्हें देख करके हंसी आ गई कि अरे इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है, 100, 200, 500 रुपए के ये तो पत्थर के आर्टिफिशियल ये तो टुकड़े हैं, इनकी क्या कीमत है। पर उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता के मित्र होने के बावजूद भी मुझे इस वास्तविकता से वाकिफ नहीं कराया, वो तो जानते थे। तब जाकर के उनसे कहता है कि आपने तो इन हीरों को देख करके कहा था कि रख लो घर में संभाल करके और मेरे यहां काम करो, आप उसी समय बता देते कि इनकी कोई कीमत नहीं है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, ये कि बेटे अगर उस समय मैं कहता कि इन हीरों की कोई कीमत नहीं है, इनको फेंक दो, तो तुम इन्हें फेंकते नहीं बल्कि मुझे झूठा साबित करते। और आज जब तुम स्वयं हीरों के पालकी हो गए हो तब अब तुम्हें ये हीरे हीरे नहीं जान पड़ते, पत्थर के टुकड़े जान पड़ते हैं। भाई ऐसे ही जिस दिन आत्मज्ञान हो जाता है, जिस दिन हमारे अंदर ये अनुभूति होने लगती है कि संसार में हमने दुख के सिवाय कुछ नहीं पाया और वास्तविक सुख तो वितरागता में है, तब फिर किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी से पूछने जाने की आवश्यकता होती कि छोड़ दूं क्या। उस दिन तो अपने आप लगाव घट जाता है कि क्या जोड़ जोड़ के रखा मैंने जिसकी कोई कीमत नहीं है और वो सब मैंने खो दिया जो कि बहुत कीमती। सामायिक की प्रक्रिया हमें यही बोध देती है, यही ज्ञान कराती है कि क्या गुणकारी है और किस चीज में हमारा पतन है। गुण और दोष इन दोनों का जब हमारे जीवन में अनुभव होता है तब हम दोषों को छोड़ना शुरू करते हैं। अभी तो सिर्फ हमें बुद्धि में दोषों के बारे में ज्ञान है, हमें अनुभव नहीं है। जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा, हाथ में गर्म चीज आ जावे और अनुभव हो रहा है गर्म का, तो किसी से पूछने जाते कि क्या भैया जब छोड़ देवे कि नहीं छोड़े, कब छोड़े, कहाँ छोड़े, कुछ नहीं पूछते। कोई डिस्कशन करने के लिए कोई मैंने मीटिंग भी नहीं करते आपकी, क्या करते। अभी तो बात अलग है कि अगर कोई कहे कि त्याग कर दो तो जरा पूछेंगे, जरा विचार करेंगे। मुनि बनना, अरे ठहरो अभी बहुत विचार करेंगे, ऐसे थोड़ी आसान थोड़ी है, ऐसा कह देंगे। पर लेकिन जिसके हाथ में जैसे गर्म चीज आ जावे उसको अनुभव हो जावे फिर वो हाथ अपने आप छोड़ क्या देता, छूट ही जाते हैं। ठीक ऐसे ही जिस दिन अपने मन में ये चीज अनुभव में आ जाएगी कि वितरागता में सुख है, संसार के राग द्वेष और प्रपंच बढ़ाने में सुख नहीं, अभी तो उसी में सुख जान पड़ रहा, कोई समझाएगा तो बुद्धू मालूम पड़ेगा, धोखा करने वाला मालूम पड़ेगा कि देखो जी हमें धोखा दे रहा है, संसार में तो इतना सुख मिल रहा है मुझे, धन पैसे हैं मेरे पास, अच्छा खासा वैभव है, खूब सुखी हूं मैं, और ये कौन सी बात कर रहे हैं कि संसार में दुख है, हमने तो अभी तक नहीं देखे दुख, ऐसा मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आत्म सुख की लग जागृत होगी उस दिन जो है हमें अपने आप ये भौतिक सुखों से विमुक्ता होगी। सामायिक हमारे मोह को तोड़ करके हमें भौतिक सुखों में जो आसक्ति है उसको घटाती है और हमें आत्म सुख की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज अपन ने एक बात और सीख ली कि जब हम सुबह शाम बैठें और इस बात का विचार करें कि गुण दोष क्या है और हम अनुभव करें कि वास्तव में ये चीज मेरे जीवन को पतन करने में कारण है, तो फिर उस चीज से हम धीरे धीरे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि बचें, अपने आप बचना शुरू कर देंगे। और जो व्यक्ति इस आत्मबोध की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, उसके जीवन में फिर वो देखना शुरू करता है कि यथार्थ क्या है, फिर वो जैसा है वैसा अपने को देखना शुरू करता है, प्रदर्शन नहीं करता, फिर वो जैसा नहीं है वैसा प्रकट करना, ये प्रदर्शन कहलाता है। जैसा है वैसा का वैसा प्रकट कर देना, ये दर्शन कहलाता है। और अपने जीवन से दूसरे को प्रेरणा देना, ये दिग्दर्शन कहलाता है। थोड़ा सा फर्क है इन चीजों। जैसे हम नहीं हैं वैसा हम दिखाने की चेष्टा करते हैं, ये सब प्रदर्शन है, एग्जिबिट करना। और जैसे हैं वैसा, भगवान जैसे हैं बाहर भीतर एक जैसे, उनका हम दर्शन करते हैं। वे हमें अपने उस बाह्य रूप से भी और अंतरंग की निर्मलता से भी दिशा बोध देते हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति के जीवन में जो चीजें वो बाहर प्रकट करता है वे ना हो, तो कितने दिन उसकी बात पर लोग विश्वास करेंगे। ऐसा विचार अपने जीवन के बारे में भी करना चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा का वैसा अपने को प्रकट करता हूं, या कि जैसा नहीं हूं वैसा दूसरे को बताने की चेष्टा करता हूं। एक घटना किसी फोटोग्राफर ने लिखी कि उसने तीन तरह की फोटो खींचना शुरू की और बाहर एक तख्ती लगाई कि एक फोटो यहां वो खींचती है जैसे आप दुनिया की नजरों में दिखना चाहते हैं, वैसी फोटो खींच सकते हैं, और दूसरी फोटो की जैसे आप अपने आप को समझते हैं वैसी फोटो, और तीसरी जैसे आप वास्तव में हैं। सो पहली वाली फोटो जैसे दुनिया की नजरों में दिखना चाहते वह 25 रुपए की खिंचेगी, और जैसे आप खुद को मानते हैं कि हम तो ऐसे हैं 15 रुपए में, और जैसे वास्तव में आप हो वह 5 रुपए में। उसने अपने जीवन में संस्मरण में लिखा कि मैं तो सोचता था कि कौन खिंचवाएगा 15 और 25 वाली, सब जैसे हैं वैसी खिंचवाएंगे 5 वाली, लेकिन पूरी जिंदगी किसी ने भी जैसे हैं वैसी नहीं खिंचवाई, जैसे दुनिया में दिखना चाहते वैसी फोटो खिंचवाई, महंगी वाली फोटो खिंचवाई अपनी बात। ये प्रवृत्ति क्या कहलाती, ये अपने को जैसे नहीं है वैसा प्रकट करना। जितने अच्छे नहीं है उतने अच्छे प्रकट करने से अच्छाइयों का की तरफ बढ़ने का फिर पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने को अच्छा मान लिया, मान के ही बैठ गए। अब जो बुराइयां हैं उनकी तरफ कौन देखे। हम अपने हाथ से इस तरह अपना अहित करते हैं। हम गुणवान नहीं हैं, लेकिन गुणवान दिखना चाहें तो कभी गुणवान नहीं बन सकते। गुणवान बनना अच्छी चीज है, गुणवान दिखाई देना ये तो अपने साथ ही धोखा है। सामायिक हमें इस भ्रम को तोड़ने की प्रेरणा देती है कि आप जैसे हैं वैसा अपने को प्रकट करिए, अत्यंत सहज होकर के आप अपना जीवन जिए, अन्यथा दिखावे में पड़कर। और आज देखें अगर जमाना, तो पूरा जमाना क्या धार्मिक क्षेत्र और क्या सांसारिक क्षेत्र, सब जगह एक ही चीज है दिखावे का। जितना जो प्रदर्शन कर सके वो उतना बड़ा। संसार में आज यही चीज, चाहे शादी ब्याह में ले लो, अपनी घर की स्थिति कैसा होए, लेकिन शादी ब्याह ऐसा करेंगे कि इनसे ज्यादा कोई रईस आदमी न हो। इसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में अपने आप को भले ही जीवन में धर्म ना आवे, लेकिन धर्मात्मा ऐसा प्रकट करेंगे कि हमसे ज्यादा कोई धर्मात्मा नहीं। बढ़िया से तिलक लगाए, बढ़िया पंचा उड़े हुए हैं, सब साफ सुथरा मामला है, लेकिन भीतर भीतर कितनी कलुषता है, ये बात अपन को स्वयं नहीं दिखाई पड़ती। और सामायिक जो करना शुरू कर देता है उसे ये बात दिखाई देने लगती कि अरे ये तो मैं बगुले जैसा कर रहा हूं, जो कि ऊपर से अत्यंत उज्जवल है, एक टांग पर खड़ा हुआ है, मालूम पड़ता है कि जैसे ध्यान में लीन है, लेकिन वो ध्यान में लीन नहीं है, वो तो इंतजार कर रहा है कि मछली जैसी दिखेगी तो पकड़ लूंगा उसे। ठीक ऐसा ही क्या हमारी प्रवृत्ति तो नहीं है। हमें ये विचार करना है, दूसरे की तरफ देखने के लिए नहीं कह रहा हूं कि दूसरे की तरफ आप देखने लगो कि इनकी प्रवृत्ति कैसी, वो तो जिसकी जैसी है उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन हम अपने जीवन में सामायिक के समय ये एनालिसिस करें कि कहीं मैं जैसा हूं वैसा प्रकट करता हूं, या जैसा नहीं हूं वैसा दिखने की कोशिश करता हूं। एक राजा ने घोषणा की कि हम अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे किसी व्यक्ति को, हम देना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो संपत्ति होने के बाद प्रदर्शित ना करें उसे। बहुत लोग आए राजा के पास कि हमें दे दो, हम बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करेंगे। एक तरह से उनके राज्य का हर व्यक्ति राजा के पास आकर के कह गया कि हमें दे दो, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन किसी को नहीं दी। मालूम पड़ा कि एक युवक है जो अभी तक नहीं आया, जिसने नहीं कहा। लोग जब उससे कहते हैं तो कहता कि ये मेरे बस की बात नहीं है। राजा उसके पास चल करके आया कि मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति देना चाहता हूं। उसने कहा आपकी शर्त कठिन है, इसलिए मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि संपत्ति मुझे मिलने के बाद मैं उसे प्रदर्शित ना करूं, ये बहुत कठिन है। इसलिए तो राजा ने कहा कि जब तुम इतना कठिन मान रहे हो तो तुम ही इसके योग्य हो जो इतना विचार कर रहा हो। बाकी लोग तो बस आके कह के गए कि हमें दे दो, हम बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करेंगे, और एक व्यक्ति भर जो ये कह रहा है कि बहुत कठिन है, मैं नहीं ले सकता। तो राजा ने पूरी संपत्ति उसे दे दी। अब पूरी संपत्ति राजा ने उसके नाम लिख दी, सारा राज वैभव। उसके बाद भी देखा दूसरे दिन लोगों ने सड़कों पर, वो तो वैसा ही पैबंद लगे कपड़े और जैसी टूटी चप्पल पहने हुए घूमता था, वैसा ही घूम रहा है। लोगों ने कहा कि कल तुम्हें राजा की पूरी संपत्ति मिल गई और तुम ऐसी हालत में। तो उसने क्या जवाब दिया, राजा की संपत्ति मैंने बहुत सोच समझ के ली है उनकी शर्त के मुताबिक। अगर मैं थोड़ा भी अपने जीवन की प्रक्रिया जो जीने की पहले थी उसमें परिवर्तन करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने को संपत्तिवान मान करके प्रदर्शित कर रहा हूं। ये उदाहरण है। हमारे पास तो जो चीज नहीं है वो हम प्रदर्शित करते हैं, उसके पास तो इतना होने के बाद भी कहता कि अपना जीवन तो वैसे ही जीऊंगे, रखने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कल राजा के पास थी, आज मेरे पास में, कल किसी और के पास चली जाएगी, किस बात का प्रदर्शन, किस बात का दिखावा कि मेरे पास है, किसके हाथ में रही है, आज जिसके हाथ में कल किसी और के हाथ में चली जाएगी। ये बाह्य सुख जितने भी हैं उनके बारे में क्या ऐसा हमारे मन में भाव आता है। लेकिन अपन के साथ तो जैसे ही अपन को बाह्य सुख सुविधा की सामग्री मिलती है, जब तक दूसरे को दिखा नहीं लेंगे तब तक जो है उसका मजा ही नहीं आता उसका। अगर आपने नई कार ली है और किसी ने नहीं पूछा कि ये नया मॉडल कब लिया है, तो वो नई कार ऐसा लगता है कि कहां ले जाएं उसको। और अगर आपने किसी से ये कह दिया, किसी ने नहीं पूछा, मान लो ये कह दिया कि क्यों भाई आपको नहीं मालूम कि नया वाला मॉडल लेके आया हूं मैं कार का, और वो अगर कह दे कि सो व्हाट, तो मैं क्या करूं, रखे रहो अपने पास, तब तो फिर वो कार उठा करके फेंकने का मन हो जाए कि बेकार हो गया। ये सारा जीवन अपना इसी तरह व्यतीत हो रहा है। अगर अपन गौर से देखें, एक एक चीज को गौर से देखें कि क्या हम इस तरह कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें परिवर्तन करें, क्योंकि हमने ये तय किया है कि अपने जीवन को हम अच्छा बनाएंगे। किसी और से तो हमने कोई वादा किए नहीं, अपने आप से वादा किया है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। तो फिर हमें इस बात को भी एनालाइज करके और अपने जीवन में निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी चीज आज एक और अपन सीख लें कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने भूल करी, क्षमा कर देना और भूल जाना बहुत मुश्किल है। पहली चीज तो किसी की गलती को क्षमा कर देना कठिन है, और क्षमा करके और भूल जाना और ज्यादा कठिन। फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं तो अपन किसी की भूल को क्षमा कर देते हैं फिर भी याद रखते हैं कि देखा मैंने तुम्हारी गलती को क्षमा कर दिया था। यह हमारे अपने जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको आचार्य भगवंतों ने, जिसको कि मैं आपसे इंग्लिश में कह रहा हूं कि गलती की क्षमा करना और भूल जाना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसको आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी कषाय से बचना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। भाषा का बड़ा फर्क है। सम्यक दृष्टि होगा जिसने अपने जीवन में दृष्टि की निर्मलता हासिल करके और अनुभव कर लिया होगा, वो कषायों को प्रोलॉन्ग नहीं करेगा, वो बढ़ाएगा नहीं। क्षण भर के लिए अगर मन में किसी के प्रति कोई भाव उत्पन्न हुआ है, तब उस भाव को हम कितनी दूर तक बढ़ाते हैं इससे मालूम पड़ता है कि हम किस चेतना वाले हैं। सामायिक करने वाले की चेतना इतनी विशुद्ध हो जाएगी कि फिर अगर उसके मन में कोई कषाय की लहरें उठेंगी भी तो ज्यादा समय तक नहीं उठेंगी, वो तुरंत और उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेगा। सुबह का किया शाम तक हाथ जोड़ लिए, सुबह क्रोध आ गया था शाम तक क्षमा भाव धारण कर लिया। अपना क्रोध तो शांत हो जाता है थोड़ी देर में, क्योंकि क्रोध कषाय ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट चलेगी उसकी तीव्रता, सो अपन चुप होकर के दूसरे काम में लग जाते। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसका वासना काल बहुत समय तक रहता है, जब तक कि जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध आया है तब तक उसके प्रति क्षमा भाव धारण नहीं कर लोगे तब तक वो क्रोध का वासना काल है, और अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो समझना अनंत अनुबंधी कषाय आ गई, मिथ्यात्व आ गया, अनंत संसार। अब चाहे कितने अच्छी क्रियाएं करते रहो, कुछ भी करते रहो, वो आपके लिए संसार बढ़ाने वाली हो जाए। इसी को दूसरी भाषा में आपसे कह रहा हूं, शास्त्रीय भाषा तो ये है। और अपने रोजमर्रा के जीवन में कि अगर गलती किसी ने की है तो फॉरगिव, क्षमा करो, एंड फॉरगेट, भूल जाओ। ये प्रक्रिया जो जितनी जल्दी सीख ले, जो जितने जल्दी इस तरह अपने जीवन को समायोजित कर ले, समझना वो अपने जीवन को अच्छा बना लेगा। सामायिक हमें यही सिखाती। अपन अभी तक तो यही सोच रहे थे कि सामायिक का मतलब है कि माला ली, फेर ली, 5 फेरना सुबह, 5 फेरना शाम को, दोपहर में बैठे गए, दोपहर में फेर दी और हो गई सामायिक। सामायिक करने वाला इन सब चीजों को अपने भीतर प्राप्त कर लेता है इतनी आसानी से, क्योंकि सामायिक विचार और अनुभव की मिली जुली प्रक्रिया है, जिसमें हम विचार करते हैं और अपने अनुभव से उस चीज को कन्फर्मेशन भी करते हैं, उसको हम मजबूत बना देते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। जिस चीज का विचार कर रहा हूं मैंने दिन भर में ऐसा अनुभव भी किया, और अनुभव और विचार दोनों की प्रक्रिया से हमारे आचरण में धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। एक और घटना जो मैंने कल बुद्ध की सुनाई थी, वैसी एक और घटना उनके जीवन की है। एक बार एक पेड़ के नीचे वो बैठे हुए सब अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उतने में ही एक व्यक्ति आकर के उनको गाली देने लगा, जैसे कि कल मैंने आपको घटना सुनाई थी, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। जब उनको वो गाली देने लगा, आप ये ध्यान रखना जो जितने, एक व्यक्ति ने लिखा है कि आपकी आलोचना होने लगी है पीठ थपथपाओ, महापुरुष बनने की निशानी है। हाँ, क्योंकि जो जितना सही होगा, जो जितने सच्चे रास्ते पर होगा, महिमा मृगी कौन सुकृत की विषखण खल विद बाची। किसी व्यक्ति की महिमा फैलने लगे तो समझना कि खल आदमी उसके पीछे लगे बिना नहीं रहेंगे। जैसे कि हिरणी स्वच्छंद विचरण करे जंगल में, पर ना भूले कि विष से बुझा हुआ शिकारी का बाण उसका पीछा कर रहा है। इसलिए जब भी सुकृत करने जाओगे, जब भी अपना और प्राणी मात्र का भला करने जाओगे, ये ध्यान रखना कि कुछ लोग और बाधक जरूर से बनेंगे। अब वे तो अपने धर्म ध्यान में लगे हैं, सबके लिए उपदेश दे रहे हैं, और नहीं जमा किसी को, नहीं जमता कई लोगों को। असल में आदमी चाहता यह है कि उसके मन की हो तो सब अच्छा, और उसके मन की ना हो तो सब बेकार। फिर नहीं देखते गुण, उसकी दृष्टि में एक बार जैसे मोतियाबिंद हो जाए किसी को तो उसको फिर साफ नहीं दिखता, दो दो नजर आते। ठीक ऐसे ही जिसकी दृष्टि में एक बार किसी के प्रति और घृणा का भाव जागृत, अपने मन में भी ये साइकोलॉजी में प्रिजुडिस कहलाता है। एक बार अपन चीजें, वस्तु और व्यक्ति के बारे में जो धारणा बना लेते हैं, फिर वो धारणा नहीं बदलती, फिर वैसा का ही वैसा दिखाई पड़ता है, हम उसे बदलना भी नहीं चाहते। ये अनंतानुबंधी कषाय का काम है भैया, इससे बचना चाहिए। ये जितने जी केसेस लड़ने वाले लोग हैं, जिनके सालों केस चलते हैं, उनके कषाय का कोई भरोसा नहीं। 6 महीने से ज्यादा अगर आपने क्षमा भाव धारण नहीं किया तो समझना कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से कोई ना कोई एक है, क्योंकि 6 महीने तो ड्यूरेशन अप्रत्याख्यान का है, और उसके बाद अगर सीमा का उल्लंघन किया तो अनंतानुबंधी कषाय। फिर भगवान के चरणों में पूजा पाठ भी करते रहो तो भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी, मिथ्यार्थ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को सीखें कि जैसे ही हमें किसी के बारे में कोई दुर्भावना आए, हम 48 मिनट 15 दिन 6 महीने से पहले पहले, बहुत हो गया मैक्सिमम, उसके पहले पहले उसको भूल जाए, उसे क्षमा, उसके प्रति वो क्षमा भाव धारण करे चाहे मत करे, जिसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना आई, हम स्वयं उसके प्रति सद्भावना बना ले। सबसे धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण तो यही है कि अगर कषाय के वशभूत किसी के प्रति दुर्भावना भी आ जाए तो अगले क्षण ही सद्भाव, सामने वाला भले ही दुर्भाव रखे रहे लेकिन अपने मन में सद्भाव आ जावे। ये प्रक्रिया कौन सिखाता, ये प्रक्रिया सामायिक सिखाती। वे, मैं आपसे कह रहा था कि बुद्ध बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और 2 मिनट लगेंगे, समय की सीमा अपनी है, पर रोज थोड़ा बहुत हो जाता है। अभी सुबह से भी मुझे लेट हो जाता हूँ, 8:30 की जगह 8:35 हो जाता है, फिर भी मैं आपसे कह रहा था कि मुझे इन सब छोटी सी चीज़ों का बहुत फील होता है। मैं जब अपने समय पर अपना काम नहीं करता हूँ, 1-2 मिनट भी फर्क होता है तो मैं दृष्टि चली गई घड़ी पर, अब बहुत मुश्किल है कि मैं जल्दी से फिनिश करूँगा, अब आगे नहीं बढ़ सकता। वो गालियाँ दी उसने, जैसे कि कल हमने कहा था कि उसने बहुत गालियाँ दी, साधु जी होने के बाद भी उसके मन में उनको गालियाँ दी, थूक दिया तो पहुँच लिया, और अब इसके बाद शिष्यों को तो समझा दिया बुद्ध ने, पर वो जो व्यक्ति जिसने गालियां दी थी और थूक करके चला गया था, वो आधे रास्ते पहुंचता है और उसके मन में विचार आता है कि मैंने इनको गालियां दी, मैंने इन पर थूक भी दिया, पर फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे होगा ऐसे ही, बहुत बेईमान व्यक्ति है, मैंने ठीक ही किया। और थोड़ा आगे बढ़ता है तो मन में दूसरा विचार आता है कि नहीं, मैंने ठीक नहीं किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था, मैंने व्यर्थ ही जो है उनको गालियां दी, और गालियां दी थी यहां तक तो ठीक था, फिर थूक भी दिया और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा, कोई महान आत्मा ही है। अब घर के दरवाजे तक पहुंचते छटपटाहट और ज्यादा बढ़ गई, मैंने इतना कुछ कहा और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अगर कुछ कह लेते तो हिसाब चुकता हो जाता। हां ये ड्यू है मामला, ये ड्यू मामला बहुत कठिन होता है। अब रात नींद नहीं आ रही, सुबह मुंह अंधेरे 4 बजे उठ करके भागता है, वहां से भागता है कि मिल जाए जंगल में वे साधु जी, क्षमा मांग लूंगा कि कल मैंने जो गालियां दी थी आपको, अपशब्द कहे थे, थूक दिया था, वो मैंने अच्छा नहीं किया। और भागता जाता है, बुद्ध तो उस वृक्ष से और आगे बढ़कर किसी और वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए थे, मिल जाते हैं उसको, चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा करें। तो बुद्ध कहते हो कौन आप? अरे हूं कौन, वही हूं जिसने कि कल आपको गालियां दी थी, थूक दिया था, याद करो आप। कहते तुम वो तो नहीं लग रहे, क्योंकि वो तो गालियां दे रहा था, थूक रहा था, पर तुम तो कोई और हो, क्षमा मांगने वाला तो कोई और है, वो तो आत्मा कोई और थी, वो तो आत्मा की कोई और अवस्था थी। और सुनो मैं भी वो नहीं हूं, कल कोई और था, मैं तो आज इतना परिवर्तित हो गया हूं, एक दिन तो व्यतीत हो गया मेरे भीतर, वो पर्याय चली गई, और देख रहे हो ये वो वृक्ष नहीं जिसके नीचे मैं बैठा हुआ था। इतना फॉरगिवनेस, इतना फॉरगेटनेस, इतना क्षमा भाव और इतना भूल जाना बहुत कठिन। साधना तो यही, सामायिक की साधना करने वाले का चित्त इतना ही निर्मल हो जाना चाहिए। हम इसकी साधना करें, कोशिश करें कि हमारे मन में भी, और इस तरह अगर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे भाव किसी के प्रति अगर खोटे हो जाते हैं तो क्या कितनी जल्दी हम संभाल लेते हैं और सामने वाले के प्रति सद्भाव धारण कर लेते हैं। ये चीज जितनी हमारे जीवन में आएगी उतना हमारा जीवन अच्छा बनेगा। भाई इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच बच कर काबिल निद्रा में सोता हो, अथवा
स्थायी निगम एक समाज बाहर से आए स्थायी अतिथियों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। स्थानीय समाज ने बाहर से आए व्यक्ति के लिए पर्याप्त प्रसाद के प्रवेशन मकान पर भोजन की व्यवस्था की है। बाहर से आए बच्चों से प्रार्थना है कि वहीं जाकर के भोजन लें।
एक सूचना है, पर्यटन पर्व में 6 की कक्षाएं साय 6:30 से लगेंगी। जो भी धर्म प्रेमी बंधु कक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करके उन्हें 30 अगस्त 2003 तक भरकर मुझे दे दें।
Thank you.